मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 3 अप्रैल 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन नौजवान साथी का नाम है अभिनव पाठक जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। तो अभिनव आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले कि न्यूज एनालिसिस पर हम बात करें मैं एक मुख्य विषय की आपको जानकारी देना चाहूंगा और वो ये है आज थोड़ा सा हट करके चीजों पर बात करते हैं और इसका संबंध इस साल जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं उनसे है। तो मैं आज आपसे इंटरव्यू में पूछे गए कुछ प्रश्नों के बारे में बात करूंगा और ये प्रश्न हमारे एक स्टूडेंट ने लिखकर भेजा है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। दोस्तों आइए पहले हम थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस के तहत छोटी दूसरी खबरों को देख लेते हैं उनका एक सिंपल सा जायजा ले लेते हैं। इराक में आईएसआईएस ने जो कुछ भारतीय जो काम करने के लिए गए थे उनके साथ कितना नृशंस इराक देश में उस संस्था ने किया है मित्रों इसकी खबर आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनते आ रहे हैं राइट। उनके जो शारीरिक जो अवशेष हैं उनकी अस्थियां जिसे हम कहते हैं वो भारत हमारे विदेश राज्य मंत्री जो हैं वीके सिंह जी लेकर के आ गए हैं और उनके घरों तक वो अस्थियां पहुंचा दी गई हैं। एक बहुत ही सामान्य सी लेकिन बहुत बहुत और बहुत ज्यादा ये दुखद खबर है कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में आतंकवाद धीरे 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 अपना हाथ पैर अपना विस्तार करता चला जा रहा है और उसके किस तरीके के नतीजे मानवता को भुगतने पड़ रहे हैं इसकी बड़ी एक करुण कहानी है। वो कितने नृशंस हो सकते हैं सच में सुन करके एक तरह से दिमाग बौखला उठता है और सुन भी पड़ जाता है कि बाप रे कोई ऐसा भी कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सामान्य सी खबर है जो मैं आपको इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से रिपीट कर रहा हूं। मित्रों दो खबरें और हैं और ये जो दो खबरें हैं सीधे सीधे सिविल सर्विस के एग्जाम में खबरों के रूप में तो नहीं पूछी जाएंगी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए एक खबर जो दलित संगठनों ने जो कल भारत बंद का आह्वान किया इसको लेकर है। इसके बारे में हम लोग कल बातें कर चुके हैं कि इसके पीछे क्या कारण है क्यों ऐसा आह्वान किया गया है और फिर उससे संबंधित जो घटनाएं घटित हुई हैं आज के अखबारों में बहुत विस्तार के साथ है न्यूज में भी वो घटनाएं हैं। तो घटनाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसके पीछे कारण क्या है और अभी तक हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। मित्रों जहां तक अस्पृश्यता की बात है भारत में मतलब मैंने दुनिया की दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है जाना है मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो अनटचेबिलिटी की जो परंपरा है कह लीजिए वो दुनिया के किसी और देश में इस रूप में रही होगी। ये बहुत ही भयावह परंपरा भारत की है और कभी कभी तो सच पूछे सुनकर के आश्चर्य होता है कि जिस देश ने प्रत्येक जीव में ब्रह्म की उपस्थिति मानी हो एक नूरते सब जग उपज्या कहा हो वो कैसे इन परंपराओं को अपने समाज में स्थान दे सकता है। बहुत ही अमानवीय परंपरा है और आप देखते हैं कि आजादी के बाद से ही जैसे हमारा संविधान बना है इसको एक अपराध घोषित किया गया है और समानता और डिग्निटी को एक तरह से मौलिक अधिकार माना गया है। चलिए संविधान एक तरफ है उसको लेकर के 89 में कानून बना जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात की है वो एक तरफ है लेकिन कभी कभी हमें इस एंगल से सोचना चाहिए कि फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। संविधान को लागू हुए आज 68 ईयर्स हो गए हैं 1950 में लागू हो चुका है और कानून को बने हुए भी आप देखिए कि लगभग 29-30 साल होने जा रहे हैं तो हमें इससे निजात क्यों नहीं मिल रही क्योंकि अभी भी इस तरह की घटनाएं गांवों में दूसरे क्षेत्रों में सुनने को मिलती हैं जो सच पूछिए तो जिनके बारे में सुन करके एक तरह से गर्दन नीची हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं ये क्या हो रहा है आखिर में इससे निजात कैसे मिल सकती है और वो भी तब हम इससे निजात नहीं ले रहे हैं जबकि इसके भयावह परिणाम हमारे समाज सदियों से भुगतता आ रहा है। चाहे वो विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में हो, चाहे आर्थिक विकास न हो पाने के रूप में हो, चाहे सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो, हम लगातार उसके दुष्परिणामों को भुगत रहे हैं लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है मित्रों। इसको आधार बना करके मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब कुछ है हमारे पास, पुलिस है हमारे पास, कानून है हमारे पास, संविधान है हमारे पास, राजनीतिक नेतृत्व है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बकायदे संसद में रिजर्वेशन है, विधानसभाओं में रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है, इसके बावजूद ये क्यों बना हुआ है? नो डाउट कि पहले जैसी स्थिति नहीं है, उसमें काफी बदलाव आया है, लेकिन जितना बदलाव आया है वो 70 सालों में जितना आ जाना चाहिए था उसकी तुलना में वो संतोषजनक नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि रिजर्वेशन की भी जो बात की गई थी, ये माना गया था कि ये 10-15 साल में हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आज भी उसकी जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब है कि वो सामाजिक समानता की स्थिति नहीं आ पाई है। दोस्तों, इसके लिए जो उपाय जब पूछे जाते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो कानून तो अपनी जगह काम कर रहा है, उसको कितना इंप्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, उसमें दुनिया भर की अपनी चकल रसें होती हैं। मुझे लगता है कि 3-4 पॉइंट्स को आप आधार बना सकते हैं। पहला तो आधार ये हो सकता है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को हमें अच्छा करना होगा, बेस्ट करना होगा, क्योंकि जो निम्न वर्ग का के जो लोग हैं, जो इसके शिकार हैं, सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, अगर उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है तो डेफिनेटली उसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव उनकी संस्कृति पर पड़ेगा, यानी मेन स्ट्रीम पर। उनकी अपनी संस्कृति है, वो नकारने की बात उससे नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक मेन स्ट्रीम की हम बात करते हैं उसमें वो ज्यादा अच्छे से शामिल हो पाएंगे। नौकरियों में आकर के वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जो कर रहे हैं उससे भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने समाज का और अच्छे से नेतृत्व कर पाएंगे, जो उन्हीं के द्वारा किया गया नेतृत्व होगा तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उनकी भी जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो और ज्यादा विकसित होगी, और ज्यादा लिबरल होगी, व्यापक होगी। स्वास्थ्य डेफिनेटली दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रोवाइड कर पाए तो जो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी खराब की ओर चली जाती है, क्योंकि देखिए बीपीएल का अगर आप देखेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल में, तो ज्यादातर इसी वर्ग के लोग हैं, और इसी वर्ग थोड़े से बीपीएल से ऊपर हैं, उन्हें सरकार के कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल रहा है, पता लगा कि बीमार पड़े और तुरंत वो बीपीएल के बहुत नीचे चले गए, तो इस पर काम किया जाना चाहिए। और फिर ये लगता है कि अगर शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली उसका भी प्रभाव सकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि देखिए शहरों में तो कम से कम ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, छोटी मोटी घटनाएं भले ही सुनने को मिल जाए, नहीं तो शहरों में कोई इस तरह से लोगों को डिवाइड करके नहीं देखता है। और फिर जितना हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विस्तार करेंगे इससे हमें निजात मिलेगा, और डेमोक्रेटिक वैल्यू का जो विस्तार करने की जो जिम्मेदारी है हम सब पर है, लेकिन डेफिनेटली राजनीतिक दलों को भी यह जिम्मेदारी या यह दायित्व अपने ऊपर लेना होगा, तो शायद हमें और समय से पहले इसमें सफलता मिल जाए। तो मित्रों, ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। जो दूसरी खबर है नेक्स्ट, वो है दोस्तों संसद। अब आप देख रहे हैं कि संसद का जो पूरा कार्यकाल है वो किस तरीके से केवल बाइकॉट करने में, स्थगन करने में समाप्त हो गया है, कुछ ही दिन बचे हैं, और इसको लेकर के सिविल सर्विस मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि हमारी संसद किस तरीके से काम कर रही है। तो इस पर अब देखिए कि जब पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी तो शायद कुछ आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, आइए अब हम मुख्य विषय की थोड़ी सी बातें करते हैं। ये प्रश्न जो पूछे गए थे मित्रों, ये भेजा है सी के मौर्य ने वाराणसी से, जो हमारे 5th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, और बड़े प्यारे से शब्दों का उन्होंने शुरू में इस्तेमाल किया है कि सर, अगर मेरे जीवन का यह खुशी का जो क्षण मुझे इंटरव्यू के रूप में 19 मार्च को मिला है, ये नहीं आया होता, मुझे नहीं मिला होता ये खुशी के क्षण, यदि मुझे आपका निर्देशन नहीं मिला होता, आपका आशीर्वाद नहीं मिला होता, क्योंकि आपके निर्देशन आशीर्वाद ने मेरी पूरी लर्निंग, थिंकिंग, राइटिंग उन सबको बिल्कुल बदल दिया है। इस तरह की कुछ अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं। मैं क्या दोहराऊं मित्रों, ये सब आप लोगों का बड़प्पन है कि आप उसका श्रेय देते हैं, अदरवाइज तो आपकी सफलता में पता नहीं कितनों का हाथ होता है, लेकिन ठीक है, मैं ये मान करके चलता हूं कि एक मधुमक्खी जो मधुरस बनाती है, जो शहद बनाती है, तो बहुत से फूलों के साथ बनाती है, लेकिन फिर भी हम श्रेय दे करके अपना आभार व्यक्त करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। फिर इन्होंने देखे लिखी लिखा है कि 19 मार्च को इनका इंटरव्यू हुआ और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे अब वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। राइट, एक बात उन्होंने लिखी है कि पहले तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए वो पूछे गए मेरी आदतों पर। इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है मित्रों, तो मुझे थोड़ा सा बताने में हिंदी में, चूंकि मैं बता रहा हूं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स बताऊंगा तो गड़बड़ी होगी, तो आप मान के चलिएगा कि कुछ मामला इसी तरह का है। उन्होंने कहा कि मेरे हॉबी के बारे में, मेरे एटीट्यूड के बारे में पूछा गया और मेरे शहर के बारे में जहां नक्सलवाद, कुछ नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, नक्सलवाद से प्रभावित है, उनके बारे में पूछा गया। एकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। और उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सब करेंट टॉपिक्स से थे। और इन्होंने एक अच्छी बात ये कही है, वो ये कि करेंट टॉपिक्स हु यू हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डीएजी लेक्चर्स लाइक, फिर वो प्रश्न पर आए हैं, मतलब वो जो प्रश्न पूछे गए उनका आपने डेली ऑडियो लेक्चर में पहले से ही व्याख्या उनकी की हुई थी। अब प्रश्नों को मैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डेयरी, डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन, डबल टैक्सेशन एवाइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया एंड जापान इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी, याद रखिए लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं है, भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति, इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी, इंडिया स्टैंड ऑन मालदीव क्राइसिस ऑन ओन व्यू, मतलब मालदीव में जो विवाद की स्थिति चल रही है, जो संकट की स्थिति है, उसके बारे में भारत क्या सोच रहा है, क्या स्टैंड ले रहा है, उसके बारे में आप अपना व्यू बताइए। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एससी प्रोसीडिंग इज लीगल आर एथिकल हैजार्ड्स, यानी कि अभी जो इच्छा मृत्यु को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो सही ठीक ठाक है या ये कोई बहुत ही बड़ा संकट है, ये इससे नैतिक संकट उठ खड़ा होगा, इस पर प्रश्न पूछा गया। Why is child marriage decline in a rural area very slow when urban area fast? जो बाल विवाह की परंपरा है वो क्यों शहरी क्षेत्रों में तो तेजी से कम हो रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम नहीं हो रही है? Importance of Asian countries for India, भारत के लिए एशियाई देशों का महत्व। National Health Protection Scheme will help it intended beneficiary, यानी कि जो आपके जो सरकार अभी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जो योजना लेकर के आई है क्या सच में उससे जो लोगों को फायदा हो पाएगा? इथोनेशिया should be made legal in India, इच्छा मृत्यु को भारत में एक वैधानिक बना देना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, खाद्य सुरक्षा, व्हाट इज डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म, इज प्रोटेक्शनिज्म गुड फॉर इंडिया एज इट हैज गुड फॉर चाइना, क्या चाइना की तरह जो डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म है वो भारत के लिए भी उपयोगी होगा? व्हाट इज न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट एंड इफ यू वेंट एज एन आईएएस ऑफिसर इन योर होम डिस्ट्रिक्ट देन व्हाट विल यू चेंज इन योर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि जब आप कलेक्टर बनकर के अपने जिले में वापस जाएंगे तो आप सबसे पहले वहां की किस समस्या का समाधान करना चाहेंगे, क्या वहां परिवर्तन लाना चाहेंगे? तो मित्रों इस तरह के कुछ प्रश्नों की चर्चा उन्होंने की है। खासकर फ्रेंड्स मैं जो बताना चाह रहा हूं इस आज के मुख्य विषय के को आधार बना करके वो ये कि बहुत से स्टूडेंट इंटरव्यू के बारे में ये सोचकर चलते हैं कि पहले हम मेंस दे दें और इसके बाद फिर हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। मैं बार बार कहता रहा हूं और अभी भी कहूंगा कि इनफैक्ट इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है, दो चीजें होती हैं, एक तो करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बातचीत करके उन्हें प्रभावित कर सके, मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान दूसरों को प्रभावित करता ही है। दूसरा है आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका अपना व्यक्तित्व, व्यक्ति का तत्व जो आपके आचार विचार व्यवहार हाव भाव इन सब से आता है। तो ये आप दो चार पांच दिन में नहीं कर सकते, महीने दो महीने में नहीं कर सकते, ये तो हमारे एक तरह से कह लीजिए कि जीवन का, हमारी चेतना का एक अभिन्न अंग होता है। तो जहां भी आप सबको लगता है कि नहीं मेरी आदत ठीक नहीं है, मेरा ये व्यवहार ठीक नहीं है, मेरा जेस्चर ठीक नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको अभी से ही सुधार उनपे करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो चीजें सुधरती चली जाएंगी और हम फिर एक बहुत ही एक प्रभावशाली सभ्य सुसंस्कृत नागरिक के रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लायक बन जाते हैं। और कुल मिलाकर के मित्रों यही इंटरव्यू की तैयारी होती भी है। तो सीके मौर्य, तो आपने अपने इंटरव्यू के बारे में लिख करके भेजा, उसके लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और सच पूछिए कि अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं और इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, और आता क्या हूं वो तो मैं आपको प्रोवाइड ही कर देता हूं, आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: पुष्पेंद्र मिश्रा रीवा मध्य प्रदेश से, शिव कुमार बंगलुरु से, उपासना श्रीवास्तव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, बबीता सोनी, प्रतीक सिंह, रवि कुमार, अनुभव मिश्रा कोलकाता से और प्रिया मिश्रा शहडोल मध्य प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।